मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आज 9 जून 2016 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सभी अपने अजीज दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने 9 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 9 साथियों के नाम हैं नंद कुमार, आप दिल्ली से हैं, विजय कुमार लोनहरे कांकेर छत्तीसगढ़ से हैं, अरजीत शुक्ला आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, संत कुमारी केवटी से हैं, रत्नेश कुमार उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और उन्नाव उत्तर प्रदेश से ही हैं आर्यन राज। राहुल डांगी आप राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं और शिवम मिश्रा आप भी उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। और अंतिम 9वें दोस्त हैं रवि कुमार जो पलामू झारखंड से हैं। तो नंद, विजय, अरजीत, शांता, रत्नेश, आर्यन, राहुल, शिवम और रवि, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस विशेष स्वागत की सूची में 3 ऐसे मित्रों के नाम हैं जो तीनों उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं। मेरा अनुमान है कि शायद तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को जानते होंगे और यदि ऐसा है तो मेरा उन्हें सुझाव है, सलाह है कि आप तीनों एक अच्छा सा आपस में ग्रुप तैयार कर लें। अगर आप लोग डेली ऑडियो गाइडेंस नियमित रूप से सुन रहे होंगे तो एक समय निर्धारित कर लें, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का, मिलने का न सही फोन पर ही निर्धारित कर लें। और आजकल तो सोशल मीडिया ने चीजों को बहुत आसान बना दिया है। और फिर डेली ऑडियो गाइडेंस में जिन टॉपिक्स पर चर्चा की जाती है, खासकर न्यूज वाले पोर्शन पर, उन पर चाहें तो आप लोग अभी से बात करना शुरू कर सकते हैं। और मित्रों, यही बात मैं अपने उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो एक ही स्थान पर हैं और एकेडमी में आ चुके हैं या आना चाह रहे हैं, वो इस तरह के ग्रुप बना करके इन चीजों को अंजाम दे सकते हैं। और यहां तक कि अगर कोई एकेडमी में नहीं आ रहा है, नहीं आया है, वह भी इस तरह के समूह बनाकर आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज गला खराब होने की वजह से मेरी आवाज में आप लोगों को थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा होगा, इतना मुझे मार्जिन देकर चलिएगा। हो सकता है कि बोलते बोलते मुझे तेज खांसी भी आ जाए, लेकिन ये मुझे एक ही कंटिन्यूएशन में इसे पूरा करना होता है। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि यथासंभव मैं इसे ऐसा कर सकूं कि आप लोगों को किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। मित्रों, एक छोटी सी सूचना है और सूचना यह है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले लगभग एक महीने से ही कह लूं कि मेरे पास लगातार 4-5 मेल इस आशय के आ रहे हैं, जिसमें पहला उनका प्रश्न ये होता है, उनकी समस्या ये होती है कि सर हम आईएएस बनना चाह रहे हैं, शुरुआत कैसे करें। दूसरे में इस तरह के मेल होते हैं दूसरे वर्ग में कि सर प्लीज हेल्प मी। देखिए मित्रों, मैं यहां एक दो बातें आप लोगों को बहुत ही स्पष्ट कर दूं। जहां तक शुरुआत कैसे करें की बात है, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बीच बीच में मुझे फिर से याद दिलाते रहना चाहिए कि मैंने एक किताब लिखी है, आप आईएएस कैसे बनेंगे। हिंदी में है, इंग्लिश में है, पंजाबी में है, गुजराती में है, चारों भाषाओं में अवेलेबल है। ओरिजिनल हिंदी में मैं लिखता हूं तो हिंदी में है। यदि आप इस किताब को ले लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर उस किताब में मिल जाए। उसमें आपको न केवल इस बात की ही जानकारी मिलेगी कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए, बल्कि आपको इस बात में भी मदद मिलेगी कि आपको पूरे अपने इस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर को प्लान कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है सारी बातें मैंने बड़े विस्तार से और समझाने के लहजे में बताने की कोशिश की है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप लोग सच में इस बारे में गंभीर हैं, मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि सच में इस बारे में गंभीर हैं, तो ये किताब ले लें, आपकी मदद करेगी। दूसरा जो सवाल है मित्रों की, प्लीज हेल्प मी, ये बड़ा वायवीय सवाल है, अब्स्ट्रैक्ट प्रश्न आपका प्रश्न है। सच पूछिए तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कहते हैं कि प्लीज हेल्प मी, तो शायद उन्हें किसी हेल्प की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो कॉन्क्रीट है ही नहीं है। जब आप मुझे बताएंगे नहीं कि किस चीज के बारे में आपकी मदद आपको मदद चाहिए, तो आप बताइए कि आपको कोई कैसे मदद कर सकता है। आईएएस की परीक्षा इतनी आसान चीज तो है नहीं कि मैं आपको एक चीज बता दूं और आपकी आपको मदद मिल जाए। इनफैक्ट इसके लिए मदद की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं होती है कि कोई बड़ी बाहरी या भौतिक मदद की जरूरत होती है। और अगर आपको रियल मदद चाहिए तो मैं समझता हूं कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस 30-35 मिनट का जो आता है, अपने लेवल पर मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग इसे ही मान सकते हैं कि आई एम हेल्पिंग ऑल ऑफ यू। तो मित्रों, ये जो इस तरह के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में देखिए कोई वजन नहीं होता है, इसीलिए इनके कोई जवाब भी नहीं होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से ऐसे मेरे मित्र होंगे जो इस तरह की जिज्ञासाएं मेरे सामने रखते हैं, मेल भेजते हैं, लेकिन चूंकि उनको उनका उसका कोई उत्तर नहीं मिल पाता, इसलिए या निराश हो जाते होंगे, बहुत लोग मुझ पर नाराज भी हो जाते होंगे कि देखिए हमारे सवाल का सर ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। सच पूछे तो मुझे खुद आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं क्या उसका उत्तर दूं। तो मित्रों, ये जो प्लीज हेल्प मी, ये बहुत हल्का शब्द है, सच पूछे तो व्यर्थ का प्रश्न है ना। इन सब से बचिए, अब आप सब मैच्योर हो गए हैं। अगर आप आईएएस के लिए तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं कि अब आप मैच्योर हो गए हैं, तो अब थोड़ी सी चीजों को मैच्योरिटी के साथ सोचिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो उस समस्या को आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुद उसका हल ढूंढें। आपकी अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी बताइए, जब तक आप सर्च नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे नहीं कि इस समस्या का समाधान आपको और कहां कहां मिल सकता है, तब तक आपका दिमाग एक्टिव नहीं होगा, उसको आदत नहीं पड़ेगी एक्टिव होने की, सोचने की, एनालिसिस करने की, तलाश करने की। ऐसे दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए। मेरे पास मेल आते हैं कि सर प्लीज प्रोवाइड मी द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज। अब आप बताइए ऐसे स्टूडेंट के बारे में मेरे दिमाग में क्या धारणा बनेगी। स्टूडेंट अपने डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेजते हैं कि सर When I will be eligible for examination? Am I eligible for examination? इस तरह के प्रश्न होते हैं जो इतनी सिंपल सी चीज अपने लेवल पर करने की क्षमता नहीं रखता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता है। आप कल्पना करके देखिए कि सिविल सर्वेंट बनने के बाद उसे तो दूसरों के लिए ही करना है, दूसरों के लिए ही करना है। तो मित्रों, ये आपके इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के जो विचार होते हैं, इसका बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़ता है। और आप याद रखें कि अगर आप अभी से इन चीजों को नहीं सुधारेंगे तो इंटरव्यू बोर्ड में भी ये चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। हो सकता है मित्रों कि मेरी यह बात आप लोगों को रुचिकर न लगे, थोड़ी सी बुरी लगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसकी भी बात न मानी जाए वही बुरा मान बैठता है। ये हमारी अपनी समझ है, हमारा अपना दिमाग है, हमारे अपने संस्कार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जो बहुत जरूरी चीजें जब हो जाती हैं तो उनकी तरफ एक विनम्रता के साथ और सरलता, सहज और संतुलन के साथ में उसे व्यक्त भी कर देना चाहिए। तो मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैं ये बातें आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मित्रों, अब हम आते हैं जो पिछले दो दिनों से जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, सेंसिटिविटी पर, और आज उसका अंतिम चरण है। आज मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा मित्रों कि ये जो सेंसिटिविटी है आखिर में इसको कंट्रोल करेंगे कैसे, क्योंकि कंट्रोल तो किया जाना चाहिए। याद रखिए कि आपको कभी कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, और शायद इसीलिए आप लोग पूछ भी रहे हैं। अगर फायदा होता तो आप तो ये पूछते मुझसे कि सर इसको और ज्यादा कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो बहुत फायदे की चीज है, ये नुकसान ही करता है। मित्रों, पहली बात जो कल मैंने बहुत विस्तार के साथ बताई थी कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि वो सेंसिटिविटी कहां है और दूसरी चीजें कहां है। आप पाएंगे कि जैसे ही आपको सच पता लगेगा, सच आपकी पकड़ में आएगा, वैसे ही आप देखेंगे कि चीजें बदलने लगेंगी, क्योंकि अब आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको लगा कि नहीं, ये तो आपका भय है, सेंसिटिविटी नहीं है, तो आप भय के लिए काम करेंगे कि मुझे इस भय से उबरना है। इस खंडहर को देख करके मैं ओवर सेंसिटिव हो जाता हूं तो ये मेरा भय है, मुझे इससे उबरना है, तो आप भय पर काम करेंगे। आपको जहां पता लगेगा कि नहीं, ये तो मेरी अपनी वीकनेस है, तब आप अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि नहीं, यहां जो सेंसिटिविटी मैं दिखाता हूं ना, एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, इसमें कहीं ना कहीं मेरा कोई स्वार्थ है या मेरी अपनी ही चाहत है, मैं चाहता हूं कि उसके प्रति मैं जानबूझकर ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाऊं, तो फिर वहां आप अपनी चाहत को विड्रॉ करेंगे, आप अपने स्वार्थ को विड्रॉ करें अगर आप बचना चाह रहे हैं तो, और उसको अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो फिर वो आपके ऊपर है ना। जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह आप ओवर सेंसिटिविटी से ही काम करते होंगे, कहीं थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका कोई ऐसा मापदंड तो है नहीं थर्मामीटर की तरफ कि आपको अगर 0.1 डिग्री टेम्परेचर भी अधिक है तो पता लग जाएगा, है ना। उतना वेरिएशन तो होता है, लेकिन उस सीमा पर रुक जाइए जहां से आपको महसूस होने लगता है कि अब आपका नुकसान हो रहा है, आप अपने आप को कोस रहे हैं। होता यह है ना कि दूसरा तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन करने के बाद, होने के बाद हम खुद पछताते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कर दिया, क्यों ये वायदा कर दिया। लोग ओवर सेंसिटिविटी में बड़े बड़े वायदा कर देते हैं, अच्छा तुमको पैसों की जरूरत है, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, और पता लगा खुद के पास पैसे नहीं है, तो अब हम उधार मांग करके फिर उसकी मदद कर रहे हैं ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो मित्रों पहली बात तो ये कि जैसे ही आप डिफरेंस पकड़ लेंगे, आप देखेंगे कि आपको मदद मिलने लगेगी, आप विश्वास कीजिए, करके देखिए, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरी दो चीजें, एक दो चीजें मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा मित्रों, कि हमें तार्किक व्यक्ति बनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि विशुद्ध तार्किक बनना चाहिए, तर्कवादी कहने का मतलब मेरा ये भी नहीं कि हम कुतर्कवादी बन जाएं। तर्कवादी मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो चेतना है वो थोड़ी सी वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए, चीजों को दिमाग से भी सोचने और समझने की कोशिश करनी चाहिए और चीजों का विश्लेषण करना चाहिए कि अगर कोई घटना है तो ये घटना क्यों है, उसके सच की तह में जाने की कोशिश होनी चाहिए कि हम उसके सच को समझें कि असल में दरअसल ये है क्या। हम होता यह है कि हम इमीडिएट रिएक्शन में आ जाते हैं, हम आवेग में आ जाते हैं। तो अगर आप वॉच करने लगेंगे अपने बिहेवियर के पैटर्न को, तो धीरे 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 आप देखेंगे कि अचानक तो नहीं होगा कि आप बिल्कुल ब्रेक लगा देंगे, लेकिन धीरे 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 वॉच करने से, उसके बारे में सोचने से, उसकी समीक्षा करने से, आपके व्यवहार में एक तरह का नियंत्रण आने लगेगा, ब्रेक सा लगने लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं कहता हूं कि हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर भी लग जाए, अचानक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप अचानक लगे करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आर्टिफिशियल होने लगेगा, है ना, अननेचुरल हो जाएगा और सामने वाले को बिल्कुल पता लग जाएगा, फिर कहेगा कि अरे अचानक इसको ये क्या हो गया, तो वो भी गड़बड़ होता है। तो एक तो आप थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर के बनने की कोशिश कीजिए, तर्क को लाइए, सामने लाइए, थोड़ा सा विचार कीजिए, किसी को भी कुछ भी तुरंत वायदा मत करिए, एक वाक्य अपने दिमाग में बसा लीजिए और वह कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूं, अच्छा ठीक है मैं सोचता हूं, ठीक है मैं बताता हूं, इस तरह की सेंटेंस कुछ दिमाग में लाइए, तुरंत आप उसे कमिट मत कर दीजिए। दूसरा यह है मित्रों कि फिर आप थोड़ा सा यह भी देखिए कि जो आपकी अतिरिक्त संवेदनशीलता है, इस अतिरिक्त संवेदनशीलता की सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इस संवेदनशीलता के की गर्दन में अब आप तर्क की लगाम कसिए, मतलब जैसे ही संवेदनशीलता आ रही है, तो उस समय तो चलिए आपके कंट्रोल में नहीं था, उस समय आपने होने दिया कर दिया, फिर जो संवेदनशीलता जो आपने कमिट कर दिया है या जो कुछ भी उस समय की घटना हुई है, उस घटना की फिर बाद में आप एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, और इस तरीके से उसको विश्लेषित कीजिए कि यदि मैं इसकी जगह पर ये कहा होता मैंने तो क्या होता, यदि इसकी जगह पर ये कहता तो क्या होता, ऐसा कहता तो क्या होता, मतलब सोचिए कि उसके और क्या रास्ते हो सकते थे। इससे फायदा यह होगा कि हम लोगों के दिमाग में क्या है ना कि आदत पड़ जाती है लगातार एक ही पैटर्न पर करते करते, तो दिमाग जब उस तरह की घटनाएं घटती हैं तो उसी पैटर्न पर रिएक्ट करता है, दूसरा वाक्य, दूसरा बिहेवियर, दूसरा व्यवहार हमें सूझता ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने उस रिएक्शन के बारे में सोच करके 2-3 और उसके पैटर्न निकालेंगे, रास्ते निकालेंगे, तो आपके दिमाग में वो रास्ते दर्ज हो जाएंगे, अच्छा ये भी तो हो सकता था, अच्छा ये भी तो हो सकता था। तो देखिए दूसरी बार जब इसी तरह की घटना घटेगी तो मैं ये नहीं कहता कि अब अभी जो आपने रास्ते निकाले हैं उसी में से आप एक रास्ता चुन लेंगे, क्योंकि उसको तो पुराने रास्ते की आदत पड़ी है, हो सकता है कि इस बार भी आप चूक जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि 2-3-4 बार चूकने के बाद फिर आपका चूकना बंद हो जाएगा और फिर आप एक नए पैटर्न में ढलने लगेंगे और वहां पर फिर आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी है ये ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल होने लगेगी। तो मित्रों ये मैंने एक दो छोटे छोटे और उपाय बताए हैं, आप करके देखिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी इनको इस्तेमाल में लाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। तो दोस्तों लाइफ मैनेजमेंट के बारे में इतना ही, अब हम लोग आते हैं कल के AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स कल के दो तीन इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जिनको लेकर के मैं चर्चा करना चाहूंगा। नो डाउट सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज कौन सी थी वो आप लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल आपने सही समझा है, वो भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच की मुलाकात। हालांकि जब ये न्यूज तैयार की गई है उसी समय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन में अपना भाषण देना शुरू किया था, इसलिए भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा वो बातें समाचार में नहीं आई हैं, लेकिन चैनल पर उसका सीधा प्रसारण हो रहा था, मैंने वो पूरा भाषण सुना और आज अखबारों में भी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइट्स हैं, वो दिए हुए हैं। मित्रों एक चीज याद रखिए, आपकी जो इस तरह के जो भाषण होते हैं, है ना, क्योंकि मैं तो इसका प्रत्यक्ष दर्शी रहा हूं, राष्ट्रपति जी के साथ जाते थे, कहीं संसद के संयुक्त अधिवेशन को दे रहे हैं, कहीं मतलब आपस में बातचीत हो रही है, इस तरह के सारे इवेंट्स मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मैंने देखा है, उसमें मैं तो इन्वॉल्व रहा हूं, देखा ही क्या है, मतलब इन्वॉल्व रहा हूं। देखिए ये जो भाषण होते हैं ये बेसिकली सैद्धांतिक रूप में होते हैं, इन भाषणों में आपको सीधे कोई प्वाइंट नहीं मिलेगा, इस तरह के औपचारिक भाषणों में आपको कोई प्वाइंट नहीं मिलेगा जिसको आप परीक्षा के लिए सीधे सीधे नोट कर लें, इससे आपको केवल एक इम्प्रेशन मिलता है। इम्प्रेशन जैसे मैंने पूरा ये भाषण सुना तो एक इम्प्रेशन मिल गया कि भारत अमेरिका से किस तरह के संबंध चाह रहा है, किन किन क्षेत्रों में वह उसकी मदद चाह रहा है और भारत खुद भी किन किन क्षेत्रों में उसकी मदद कर रहा है, अब भारत और अमेरिका के संबंधों के बीच की दिशा क्या होगी, भारत की वैदेशिक नीति जो अमेरिका के प्रति है वो क्या रूप लेगी, किस शेप में आगे बढ़ेगी, तो इस तरह का जो आभास है वो आभास मिल जाता है। और इस तरह के जो भाषण होते हैं वो फिर आप मान करके चलिए कि फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये केवल मतलब आप इनको चुनावी भाषण या सामान्य नेताओं के दिए गए भाषण मत समझिए, है ना, ये बड़े एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की तरह होते हैं, है ना, ये इनका महत्व होता है और इनको प्रिजर्व किया जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे संयुक्त संसद के अधिवेशन में ये बात कही और वो कोट किए जाते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही बात को हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी ने कोट किया। आप देख रहे हैं कि और भी लोगों की बातें कोट हुई, विवेकानंद जी की बात आई, डॉक्टर अंबेडकर की बात आई, आप देख रहे हैं, तो ये एक हमारे संबंधों में एक जो ब्रिज बनता चला जाता है ये उसका एक टेस्टिमनी है ना, उसका एक प्रमाण होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने पूरे के पूरे भाषण में अगर आपने भी सुना होगा तो, नहीं तो आज के अखबारों में देखिए कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं जिनके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत कई बार की अमेरिकी यात्रा हो गई है और मुझे ऐसा लगता है मित्रों, हालांकि अगर हम पिछले 3 साल के जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को देखें जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो उसमें अमेरिका से सीधे सीधे संबंधों को लेकर के कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस के तहत जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं पड़ोसी देशों से जुड़े हुए ज्यादा हैं, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर से रिलेटेड हैं, या फिर बिल्कुल वर्ल्ड फोरम पर जैसे वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस तरह के जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उन पर प्रश्न है, भारत और अमेरिका को लेकर के प्रश्न नहीं है। जबकि मोदी जी को आए हुए 2 साल हो गए हैं और शुरू से ही भारत अमेरिका के प्रति काफी अभी सद्भावनापूर्ण रुख लेकर के चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे ये तो नहीं लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरह से घनिष्ठ हो रहे हैं, इन पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, मैं अपने पिछले अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेट करके अमेरिका को कुछ न कुछ प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए, जैसे कि एक हम लोगों ने कल बात की थी, एक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसके बारे में बात की थी, अमेरिका ने उसे एग्री कर गया है, तो इस परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप में अमेरिका की कैसे मदद मिली, अमेरिका और क्या सहयोग हमें दे सका है, शायद कुछ घुमा फिरा करके इस तरह की बात शायद कर ली जाए, मुझे ऐसा लगता है। सीधे सीधे तो नहीं होगा। एक बात जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, सच पूछिए तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है मित्रों, वो ये है कि अभी हम इसमें चीन और पाकिस्तान को ले आते हैं क्योंकि पड़ोसी देशों से संबंध वाले प्रश्न होते हैं। पिछले दो सालों से स्पेशली आप देख रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले जब से पल्स का ये खासकर चीन हिंद महासागर और प्रशांत दक्षिण सागर इन सब क्षेत्रों में अपनी नेवी पावर को बढ़ाने की कोशिश करने लगा है, तो वो भारत के लिए एक चिंता का कारण है। अब देखिए कि थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो इस तरीके से बदल रहा है, जब से चीन आर्थिक महाशक्ति बना है तो स्वाभाविक है कि अमेरिका थोड़ा सा ठिटका है, लग रहा है कि कॉम्पिटिटर एक आ रहा है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर आ रहा है। आप महसूस कर रहे होंगे कि अब धीरे धीरे अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान की कह लीजिए कि कंधे पर पीठ पर अमेरिका का बिल्कुल वरद हस्त था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिका को अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है ये कहने में कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं है, वहां आतंकवादी अड्डे नहीं है, उसको थोड़ी सी मुश्किल जा रही है। तो अब पाकिस्तान को भी एक मित्र चाहिए, तो पाकिस्तान को वो दोस्त मिल रहा है चीन के रूप में। अब चीन अमेरिका के द्वारा खाली की गई उस जगह को भर रहा है, तो चीन और पाकिस्तान में दोस्ती बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि फिर ग्वादर बंदरगाह और इन सब में वो चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, उनको पुनर्निर्माण में मदद कर रहा है, ये चीन कर रहा है। चीन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वो भारत के साथ अपने शक्ति संतुलन को स्थापित करना चाह रहा है। चीन न केवल अमेरिका का ही कॉम्पिटिटर है बल्कि भारत का भी कॉम्पिटिटर, एशिया में तो है ही है और भारत भी चूंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। फर्क इतना ही है कि चीन ने जो चीजें 80-90 में हासिल कर ली वो हम अभी हासिल करने के करीब हैं, इस मायने में चीन हमसे 30 साल आगे चल रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भारत की शुरुआत हो चुकी है तो चीन को वो भी एक थोड़ा सा डर है। तो ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए जरूरी हो गया है, और सच पूछिए भारत से ज्यादा जरूरी अमेरिका के लिए भी हो गया कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए वो क्या करे। पाकिस्तान उसके हाथ से लगभग निकल चुका है, चीन वहां घुस चुका है, तो अब अमेरिका के लिए भी यह बहुत जरूरी है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए। ये अमेरिका की भी जरूरत है, नो डाउट हमारी अपनी जरूरत है ही, लेकिन ये एकतरफा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के अपने भाषण में कहा देखिए कि ये दोनों की जरूरत है और दोनों एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं, और बल्कि उन्होंने तो सीधे सीधे ये भी कह दिया कि अब हम केवल सहयोग की बात नहीं है, हम एक प्रतियोगी भी हैं आपके, ये बात भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको रखी। तो मित्रों इस तरीके से भारत और अमेरिका, उधर चीन और पाकिस्तान, ये पलड़ों में लेकर के अलग अलग पलड़ों में हैं और इस क्षेत्र में जो खासकर साउथ एशिया वाले हिस्से में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है, और खासकर ये जो हिंद महासागर और फिर दक्षिण चीन सागर, इधर का जो पूरा का पूरा प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो चीन की घुसपैठ होती जा रही है, सच पूछिए तो कभी कभी चीन की घुसपैठ ऐसा मालूम पड़ता है मान लो कि वो उपनिवेशवादी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा हो, या साम्राज्यवादी ताकत के रूप में वो आगे बढ़ रहा है और किसी की नहीं सुन रहा है, तो वो भी अमेरिका की एक चिंता का कारण है। तो ऐसी स्थिति में भारत और अमेरिका के संबंधों के और मजबूत होने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली उल्लेख किया कि रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे संबंध विकसित हुए हैं और पिछले 10 सालों में ही कितना व्यापार रक्षा के क्षेत्रों में बढ़ा है। युद्धाभ्यास, युद्ध के अभ्यास अमेरिका के साथ और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका ने मिलकर के सबसे ज्यादा किए हैं, तो वो भी एक इंडिकेशन है। आतंकवाद के मामले में भारत और अमेरिका एक दूसरे के जबरदस्त सहयोगी हैं ही, वो भी कहीं न कहीं एक डिफेंस और उसके सहयोग की बात करता है। तो मित्रों ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक मुझे मिलता है कि किस तरह से भारत अमेरिका के संबंध दक्षिण एशिया के क्षेत्र में एक तरह से शक्ति संतुलन का काम करेगा, तो आप उस रूप में उसको देख लीजिएगा। मित्रों जो दूसरी खबर थी वो उड़ता पंजाब जो फिल्म आने वाली है उसको लेकर के कल हम लोगों ने बात की थी, कल वो चैनल्स पे आपके न्यूज पर भी आप लोगों ने सुना, चैनल पर तो ये खबर काफी आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसे कैसे ले रहे हैं दूसरे लोग। सच पूछे तो उड़ता पंजाब के बारे में अभी जो भी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जो स्टेप उठाया है ये काफी चौंकाने वाला है। मित्रों मैं भी लगभग 40 सालों से तो इसको बहुत ही ओपन माइंड से देख रहा हूं, वो भी समझ लीजिए जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी 78-79 के आसपास करने लगा था। फिल्मों में कट लगते थे, नो डाउट कुछ फिल्में विवाद में आ जाती थी, कोर्ट केस भी इस तरीके से होते थे, लेकिन उड़ता पंजाब में जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि नाम बदलिए, पंजाब शब्द को हटाइए, फलाने जो सीन है उसको काटिए, शब्दों में जहां भी विधायक, सांसद, संसद, नेता इस तरह के शब्द आए हैं उन शब्दों को हटाइए, ये एक बहुत ही, सच पूछे तो एक दुर्भाग्यजनक सी बात लग रही है कि मतलब इस सीमा तक अगर आप चीजों को नियंत्रित करेंगे तो फिर स्वाभाविक है तो फिर आप ही बना लीजिए, फिर कोई कैसे, कोई रचनाकार, कोई भी क्रिएटिव पर्सनालिटी कैसे चीजों को अंजाम देगी। इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि काफी कुछ आलोचना भी हो रही है, हाई कोर्ट में मामला चला भी गया है। मुझे नहीं लगता है कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने जो कहा है वो टिक पाएगा, कोर्ट इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगी। मतलब ये क्या हो रहा है, सेंसर करने का आपको अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देने का अधिकार है, आप सर्टिफिकेट दे दीजिए कि इसे सिर्फ एडल्ट देखें। अगर आप कला साहित्य संस्कृति पर इतना ज्यादा दरोगागिरी करने लगेंगे तो फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये बचेंगी नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बोर्ड ने कैसे ये डिसीजन लिया है। तो मित्रों, जो एसे के रूप में कह लीजिए या हम जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर के लिए कह सकते हैं कि इसका जो सवाल है ये क्रिएटिविटी का सवाल है, इनोवेशन का सवाल है, कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जब प्रतिबंध लगाया जाएगा तो पूरी की पूरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। और इसी को देखिए अमिताभ बच्चन जी ने भी यही बात कही है। तो इस रूप में आप इस घटना को देख लीजिएगा। इसके बाद मित्रों, जो आखिरी खबर थी वो मानसून को लेकर के थी। मजेदार बात है कि उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून शब्द आया है और वो केरल पहुंच गया, केरल तमिलनाडु में कल से भारी वर्षा होनी शुरू हो गई है। जनरली एक तारीख को मानसून आता है लेकिन इस बार 7-8 दिन देरी से मानसून आया है। कोई बात नहीं, देर आए और दुरुस्त आए वाली बात है। अब आप देखें मित्रों कि जब हम इन चीजों को याद करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून है या उत्तर पूर्वी मानसून है या इतने सारे दिशाएं बन जाती हैं, चार तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाते हैं, फिर उनके भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाते हैं, उनसे आप अटैच कर दीजिए तो 8 दिशाएं तो हो ही जाती हैं, फिर मध्य भी हो जाता है तो 9-10 दिशाएं हो जाती हैं। देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा क्या मैं समझता हूं शायद एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है मित्रों के कुछ नहीं, आप अगर नक्शे से चीजों को देखने लगेंगे, नक्शे के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये समस्या रहेगी ही नहीं। समस्या तो समस्या छोड़िए, बल्कि आपको मजा आने लगेगा। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि इस न्यूज को सुनने के बाद आप थोड़ा सा नक्शे के सामने चले जाइए या नक्शे को अपने सामने ले आइए, एटलस का पन्ना खोल लीजिए और फिर देखिए कि ये जो केरल है ये है कहां नक्शे में मौजूद है। इतना तो आपको मालूम है कि वो दक्षिण में मौजूद है, लेकिन दक्षिण में कहां है, वो दक्षिण के पूर्व में है या दक्षिण के पश्चिम में है। फिर आपको मिल जाएगा कि ये दक्षिण के पश्चिम में है, तो दक्षिण के पश्चिम में है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून अगर केरल में आ रहा है तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा, बात खत्म हो गई। उसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज है ही नहीं जिसको आप याद रखेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप फिर भूल जाएं, लेकिन जब आप उसी चीज को बार बार देखेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके बाद फिर आपने न्यूज में और दूसरी चीज सुनी जिसमें उन्होंने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद सागर, हिंद महासागर, इन सब के नाम लिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा न्यूज में तो दिया ही होगा। तो आप बंगाल की खाड़ी को देखिए, बंगाल की खाड़ी हमारे बिल्कुल ईस्ट में है ना, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कई चीजें आप एक न्यूज को सुनने के बाद अगर उस पर आप थोड़ा सा समय देंगे तो उसके माध्यम से आप बहुत सी चीजों को रिपीट भी कर सकते हैं। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पश्चिम बंगाल, जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो उसके किनारे होगा। अब आप उसको पूरा देख लीजिए कि पूरा का पूरा पूर्वी तट को देख जाइए तो पूर्वी तट में आपको पूरा दिखाई दे जाएगा कि आंध्र प्रदेश, और इसके बाद फिर ऊपर जब चलेंगे नॉर्थ की तरफ तो आपको उड़ीसा मिल जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। अब ये जो मानसून है, अब इसको आप क्या नाम देंगे? चलिए वहां से अब बंगाल की खाड़ी से भी एक मानसून घुसेगा अंदर, यानी ये हमारे दो प्रोमिनेंट मानसून होते हैं, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आ चुका है, एक दूसरा मानसून होगा, उसे भी अब आप एक नाम देने की कोशिश कीजिए। मैं जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं, इसको क्या नाम देंगे? और फिर देखिए कि वो कहां से चल के कैसे घुसेगा और वो कहां कहां बारिश करेगा। उठा लीजिए एनसीईआरटी की किताब, थोड़ा सा देख लीजिए, या ज्योग्राफी की कोई भी किताब हो तो उसमें मानसून वाला चैप्टर उठा लीजिए, देख लीजिए, इस न्यूज से उसको मैच कर लीजिए, थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए, इस टॉपिक पर आपकी पकड़ बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी और सिविल सर्विस की तैयारी हो जाएगी। तो मित्रों, ये मैंने न्यूज के बारे में आप लोगों से कुछ बातें बताई। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। फ्रेंड्स, आज मैं न्यूज़पेपर की काफी क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब वक्त नहीं है कि मैं उनके लिए अलग अलग से कोई चर्चा करूं, और सच पूछे तो उस तरह की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लिपिंग्स होती हैं, सच पूछे तो मैं टॉपिक पर जाता हूं, जो टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है उस टॉपिक का इंग्लिश और इंग्लिश वाले जो क्लिपिंग्स को लेकर के, फिर हम करेंट कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर ही रहे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस पर मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, तो ये आपको नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे। तो मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। मित्रों, कल मुझे कुछ ईमेल प्राप्त हुए हैं, मैं उन दोस्तों का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया है कि जो न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको, मैं शायद पॉलिफरेशन बोल गया होगा, नॉन शब्द छूट गया होगा, पी की जगह पर मैंने पॉलिफरेशन शब्द का इस्तेमाल कर दिया होगा, तो उसके आगे नॉन शब्द जोड़ दीजिएगा, न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है। ठीक इसी तरह से चार देश मैंने बताए थे जिन्होंने इस पर एनपीटी पर साइन नहीं किए, उसमें एक भारत है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा इसराइल है, और चौथा मैंने शायद उत्तरी कोरिया बताया था। और जब मैंने चेक किया जहां से मैंने लिया था उसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने ध्यान दिलाया कि वो बेसिकली साउथ सूडान है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। मित्रों, ये जो कंटेंट होते हैं इसमें बहुत सच पूछे तो दिक्कत होती है, कभी कभी बड़ा खराब भी लगता है कि आप देख करके और वहां से चीजें लेते हैं, लेने के बाद जब आप बताते हैं तो वो क्रॉस चेक में वो गड़बड़ निकल जाती है। अब ऐसी चीजें आपको लेनी ही पड़ती हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग से कुछ फ्रेम कर ही नहीं पाते की तो बात ही अलग है। तो दोस्तों, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, साउथ सूडान है, वो चार देशों में एक देश साउथ सूडान है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, एक मेल आया है मेरे पास निम्बाराम देवासी का, जो पाली से हैं, उन्होंने राजस्थान से, वो खासकर डेली ऑडियो गाइडेंस अपने लोगों को, दोस्तों को काफी बता रहे हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो निम्बाराम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह का मेल सुशांत कुमार का भी है, जो इलाहाबाद से हैं, वो भी डीएजी के लिए, मतलब डेली ऑडियो गाइडेंस के लिए काफी काम रहे हैं। तो सुशांत, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेल और मुझे मिला है मित्रों, ये पूजा राजपूत का है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। उन्होंने एक सुझाव दिया है, मुझे ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं। उन्होंने ये कहा है कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस में जो जो चीजें दी जाती हैं, खासकर afis.com में जाएंगे क्लास वाले सेक्शन में, तो वहां दिया हुआ है ना कि डेली ऑडियो गाइडेंस में आपको क्या क्या चीजें सुनने को मिलती हैं। तो उनका कहना यह था कि अगर इसका प्रिंट निकाल करके और कॉपी बनाकर जो स्कूल कॉलेज या ऐसे जो संस्थान होते हैं वहां अगर स्टूडेंट्स को बांट दिया जाए तो उसमें से बहुत से स्टूडेंट सुनने लगेंगे। तो ये सुझाव उनका मुझे बहुत ही क्रिएटिव लगा, बहुत अच्छा सुझाव लगा। इससे आप सब एक साथ काफी लोगों तक पहुंच सकेंगे। और होता यह कि जब आप उनको रिटर्न फॉर्म में कुछ चीज प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर वो कुछ समय तक तो रखते हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों के आदत में फिर वो चीज आ जाए। और मित्रों, मैं ये मानकर तो चलता ही हूं कि आप सब जहां भी हैं वहां स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे, दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो वहां आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो पूजा, इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, और बिल्कुल आप तो अपने स्तर पर इसे शुरू कर ही सकती हैं। एक मेल है तेरेसा अलेक्जेंडर का, लखनऊ से हमारे स्टूडेंट रही हैं। उन्होंने एक सूचना देने के लिए कहा है कि ये एक डिस्कशन ग्रुप बनाना चाह रही हैं, महीने में एक बार 2 घंटे का डिस्कशन होगा, तो जो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहे वो टेरेसा से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो जो भी इनके बैच के स्टूडेंट हैं वो इनसे बात कर सकते हैं मेल पर, और इनसे संपर्क साध सकते हैं। मित्रों, इसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं, कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। छत्रपाल पाटिल जलगांव से हैं, महाराष्ट्र से। वीरेंद्र यादव न्यू दिल्ली से। बीएस मीणा जयपुर से। सेजल कुमार राजकोट गुजरात से, संदीप कुमार लखनऊ से और सौरभ यादव, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।